ಶರಣವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಹೃದಯ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಹೃದಯ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಹೃದಯ ಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jaya mudire nashta prayesha bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Umgyat Virandasya ஜனாஞ்சனாசலாக்கய சக்ஷரோன்மிலிதாம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமைஹம் ததாதி ஸ்வாபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதாபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ய ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகணா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் ஹரிஜனா சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகணா லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ஸ்ய. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமீ நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யாத்த தேச தாரிணே. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நிதி நாமினே. ஸ்ரீவாஷவானவி தேவி தயிதாய கிருபாப்தயே ஜான தாயினே பிரபவே நம. மாதுரியோஜ்ஜல பிரேமாட்ய ஸ்ரீரூபானுகா பக்தித ஸ்ரீகௌர கருணாசக்தி விக்ரஹாய நமோஸ்துதே. நமஸ்தே கௌரவாணி ஸ்ரீமூர்த்தயே தீனதாரிணே ரூபானுகா விருத்தாப சித்தாந்தத்வாந்தஹாரிணே. நமோ கௌரகிஷோராய சாட்சாத் வைராக்கியமூர்த்தயே விபிரலம்பாரசாம்போதே பாதாம்புஜாயதே நம. நமோ பக்தி வினோதாய சச்சிதானந்த நாமினே கௌரசக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுகாவராயதே கௌராவிர்பாவபூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா சஜ்ஜன பிரிய வைஷ்ணவ சார்வபௌமஸ்ரீ ஜெகந்நாதாயதே நம. வம்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்யைவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ணப்ரேம ப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணசைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நம. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தசக்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தௌ தீனபந்தௌ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. ஜெயதாம் சரதோர் பங்குர் மாமந்த மதேர்கதி மத் சர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதனமோகனௌ திவ்ய பிருந்தாரண்ய கல்பத்ருமாதஹ ஸ்ரீமத் ரத்னாகார சிம்ஹாசனஸ்தோ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவோ ரஷ்ராலிபி சேவியமானோ ஸ்மராமி. ஸ்ரீமான் ராசரசாரம்பி தடஸ்தித கர்ஷம் வேணோ ஸ்வனேர் கோபீர் கோபிநாத ஸ்ரீஸ்துனஹ தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானோ சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீதாதர் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஆஜ் ஹம் ஹமாரே ஜோ பக்தி கே பஹுத் மஹத்வபூர்ண அங்க ஹை உஸ்கே விஷய மே சர்ச்சா கரேங்கே. வோ ஹை சரணாகதி சரண்டர். வைசே தேகா ஜாய் ஹம் சப் சரணாகத் ஹை, கிருஷ்ண கே சமர்பித் ஹை, சரணாகத் ஹை. லேகின் கிஸ்கி கிருஷ்ண கி கௌன்சி சக்தி கா சரண் லியே ஹை? கிருஷ்ண கா ஜோ பஹிரங்கா சக்தி ஹை உஸ்கா சரண் லேகே ரக்கே, யஹி தக்லீஃப் ஹை. ஹரேக் ஜீவ் இஸ் ஜகத் மே கிருஷ்ண கே சரண் மே ஹி ஹை.
लेकिन गलत शक्ति का शरण लिए। जैसे आप जानते हो कि कल से नवरात्रि शुरू हुआ, नवरात्रि के समय दुर्गा का पूजा करते हैं, दुर्गा जी को बीच में रखते हैं और नृत्य करते हैं, अनेकों भजन रखते हैं, भजन से नृत्य करते हैं, शरण लेते दुर्गा जी का। लेकिन दुर्गा जी कौन है? दुर्गा जी वो है भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के बहिरंगा शक्ति के शरण में होने के नाते हम अनेकों अनेकों प्रकार के दुखों को अनुभव कर रहे हैं। जो सोचते हैं कि मैं इस भौतिक संसार में कैसे सुखी से जीऊं, इस प्रकार का विचार रखने वाले वो दुर्गा जी का शरण लेते हैं। किसी को दुर्गा जी का शरण जानबूझ के लेते हैं, मतलब जानते हुए लेते हैं, और कुछ लोग दुर्गा जी का शरण अनजाने में लेते हैं। लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है उनका नियम इतने कठोर है, उस नियम के शरण में ही रहना पड़ेगा, उस नियम के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। आप जितना सुख भोगने का प्रयास करो उतना नियम कठोर होते जाएंगे और उतना हम दुखों का अनुभव करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखों को अनुभव किया केवल सुखों को अनुभव करता है इस जगत में। आप जितना सुखों को अनुभव करने का प्रयास करोगे, जितना सुखी होने का प्रयास करोगे, उतना दुखी होगे। ये संसार का नियम है, ये नियम को दुर्गा जी ने बनाया है। भगवान कहते हैं अगर सच में कोई व्यक्ति मेरे सुखी होना चाहता है तो मेरे शरण में आना है। भगवान कृष्ण के शरण में जाने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के शरण में जाना, कोई श्रीमती राधा रानी के शरण में जाना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। दैवी प्रकृति क्या है? राधा रानी है। तो कृष्ण का ये जो दैवी प्रकृति है श्रीमती राधा रानी है, इसका जो शरण ग्रहण करता है दैवीं प्रकृति माश्रितः भजन्ति अन्य मनसो, और भजन करता है अनन्य भजन मन से भजन करता है, उसको महात्मा कहा जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण का जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी के शरण लिए बिना जो बहिरंगा शक्ति के शरण में जाता है वो कौन है? अगर अंतरंगा शक्ति का शरण लिया हुआ व्यक्ति महात्मा है तो बहिरंगा शक्ति का शरण लिया हुआ व्यक्ति कौन है? दुरात्मा है। ऑपोजिट है कि नहीं? तो हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि दुरात्मा है हम। दुरात्मा होने के वजह से हम दुखी है। इसलिए अगर कृष्ण का ही शरण लेना है तो क्यों ना कृष्ण का शरण लेके सुखी क्यों ना हो जाए, क्यों ना हम कृष्ण का अंतरंगा शक्ति का शरण लें। तो हमारा पूरा ये जो भक्ति का पूरा प्रयास जो है यही प्रयास है, कैसे मैं कृष्ण का अंतरंगा शक्ति के शरण में जाऊं। हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। कृष्ण के शरण में जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य जीवन का, हमारा सारा प्रयास यही है। कृष्ण के शरण में जाना ही हमारा प्रयास है। एक बार पहली बार जब हम मायापुर गए थे, जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस समय मायापुर गया, कॉलेज का प्रोग्राम था, कुछ कॉलेज से 5-6 बच्चों को लेके गए थे, 2 दिन रुके थे। दूसरा दिन सुबह की बात है, जब मैं एक भक्त से ऐसी बात कर रहा था उस समय एक भक्त आए, बहुत उधर के सीनियर डिवोटी थे, प्रसिद्ध थे, बंगाली थे, वो आए और हमारे बीच में जब बात चल रहा था तो उन्होंने पूछा क्या बात चल रहा है, तो मैं जिस वक्त से बात कर रहा था उन्होंने बोला कि ये लड़के का प्रश्न है कि ये कंठी माला क्या है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे दूसरे वक्त आए थे वो सीनियर थे, उन्होंने कहा मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कभी कुत्ता देखा है, तो मैं घबरा गया क्या बोल क्या पूछ रहे भाई मैं तो कंठी माला के बारे में पूछ रहा हूँ, कुत्ते के बारे में क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ देखा हूँ, जानते हो दो प्रकार का कुत्ता होता है, तो मैं ये नहीं जानता हूं मैं तो ने कहा कि बताइए आप दो प्रकार का कुत्ता क्या है। एक कहा कि एक प्रकार का कुत्ता है बेल्ट वाला कुत्ता है, एक दूसरा बेल्ट के बिना कुत्ता है, तो मैंने ये बेल्ट वाला कुत्ता क्या है तो बाद में उन्हें समझाया कि बेल्ट वाला कुत्ता मतलब क्या, उसको कोई 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 ना मालिक है, ये बगैर बेल्ट वाला कुत्ता है इसको कोई मालिक नहीं है। जब म्युनिसिपल का गाड़ी आता है तो क्या होता है, किसको लेके जाता है, बिना बेल्ट वाला कुत्ता को लेके जाता है तो अभी भी समझ में नहीं आया क्या बात करे, मैं पूछ रहा हूं कंटी माला क्या है, उसका जवाब में कुत्ता क्या बात कर रहा है तब उन्हें समझाया ये जो कंटी माला है ना ये एक बेल्ट है तो ने कहा हम हैं कुत्ते लेकिन हम बेल्ट वाले कुत्ते हैं, जब यमराज का गाड़ी आएगा ना हमको लेके नहीं जाएगा उन्होंने तो कहा कि हम कृष्ण का शरण लिए इसलिए यमराज हमको लेके नहीं जाएगा। तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में बहुत स्ट्रांगली समझाया, अभी तक याद है मुझे लेकिन बात यह है कि हमको शरण में रहना ही है, कृष्ण के शरण में, क्यों ना स्वेच्छा से भगवान की अंतरंगा शक्ति के शरण में क्यों ना रहे। जैसे जेल में रहने वाला और जेल के बाहर जैसे हम लोग भी हैं, दोनों गवर्नमेंट के शरण में ही है कि नहीं। जेल में रहने वाला भी उसको भी व्यवस्था सब कौन प्रदान कर रहा है, गवर्नमेंट ही देता है। एक जो हम लोग हमको भी व्यवस्था गवर्नमेंट देता है, लेकिन अंतर क्या है, एक जो है कैदी के रूप में है दूसरा कौन है स्वेच्छा से। अभी दोनों गवर्नमेंट के शरण में है, क्यों ना ऐसा कृष्ण का शरण में क्यों ना जाए ताकि हम स्वेच्छा से रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम क्या करते हैं, कृष्ण का शरण नहीं ग्रहण करते, ही हमारा दुर्भाग्य है। इसे सारे शास्त्र कहते हैं कि हमको कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। भगवद्गीता का पूरा सार रूप में भगवान ने एक श्लोक उच्चारण किया, सबको मालूम है क्या, बताइए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच डरो मत। भगवद्गीता के शुरुआत में बीच में अंत में हर जगह भगवान ने ही कहा मा शुच, डोंट वरी बी हैप्पी, आप चिंता मत करो सुखी रहो। कैसे रह पाओगे, जब आप मेरे शरण में आओगे, when you come in and take shelter of me। तो भगवान का शरण लेना है तो हमको कैसे लेना चाहिए, उसके विषय में हरिभक्त विलास में श्रील सनातन गोस्वामी पाद एक श्लोक को कोट करते हैं जिसके अंदर शरणागति के 6 लक्षणों को वर्णन करते हैं। तो इन 6 लक्षणों को संक्षिप्त में हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, आप सब इन 6 लक्षणों को मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, हर चीज का एक विधि होता है कि नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवान की शरण में है बोलने से नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है तभी शरण में जाते हैं, है कि नहीं। अगर कोई बच्चा कहे मैं माँ के शरण में हूं, माँ बोलती है बेटा ये करो, मैं आपके शरण में हूं ना, आप मेरे लिए करो मैं आपके शरण में हूं। तो शरण लेना भी एक विधि है, ऐसा नहीं खाली बोलने से शरण, मैं शरण में हूं बोलने से नहीं होता है, एक बार एक व्यक्ति आया, प्रभु जी हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते। तो मैंने कहा आप जा क्या जपते हो? हम श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा जपते हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, इस मंत्र का अर्थ क्या है? मैं कृष्ण का शरण ले रहा हूं, मैं कृष्ण का शरण ले रहा हूं, मैं कृष्ण का शरण ले रहा हूं। तो कृष्ण बोलते हैं कब लोगे? खाली बोल रहे हो, लेना देना है कि नहीं? हाँ, जैसे बच्चे ने मांगा, माँ बहुत भूख लगी है, आने का मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तो बना के तो खिलाओ। तो उसको क्या, अरे शरण, श्री कृष्ण शरण है मम्मा, तो शरण तो लो आप। शरण लेने का अर्थ क्या है? जो कृष्ण ने कहा वो करो, है कि नहीं? तो कृष्ण ने क्या कहा? सततम कीर्तयंतो माम, मेरा हमेशा सतत कीर्तन करो। ये सही बात है, 24 घंटा हमको स्मरण करना चाहिए कि मुझे कृष्ण का शरण लेना है। लेकिन शरण लेना है, स्मरण करने का अर्थ ये कि शरण लेना, शरण लेने का अर्थ क्या? कृष्ण ने जो कहा वो करना। अभी शरण लेने का विधि है वो क्या है हम चर्चा करते हैं। तब वो लड़के ने सुना, बराबर बराबर भोजी, आपने बराबर बताया, ठीक है, मंत्र है श्री कृष्ण शरणम ममा, ये मंत्र का व्यवहारिक रूप में करना है कि कृष्ण ने जो कहा वो करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी देखिए शरण लेने की विधि क्या है, हम जानने की प्रयास करेंगे। ये मंत्र को, ये श्लोक को उच्चारण कीजिएगा। अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षस्यति विश्वासो, रक्षस्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणं तथा, गोप्तृत्वे वरणं तथा, आत्मनिक्षेपकार्पण्ये, आत्मनिक्षेपकार्पण्ये, षड्विधा शरणागति, षड्विधा शरणागति, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षसितीति विश्वासो, रक्षसितीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणं तथा, गोप्तृत्वे वरणं तथा, आत्मनिक्षेपकार्पण्ये, षड्विधा शरणागति, षड्विधा शरणागति। बोलिए जिसको याद है। किसी को याद नहीं? अनुकूलस्य संकल्प,
अनुकूलस्य संकल्प,
अनुकूलस्य संकल्प,
प्रतिकूलस्य वर्जनम्,
प्रतिकूलस्य वर्जनम्,
रक्षिष्यति विश्वासो,
रक्षिष्यति विश्वासो,
गोप्तृत्वे वर्णं तथा,
गोप्तृत्वे वर्णं तथा,
षड्विध शरणागति,
आत्मनिक्षेप,
आत्मनिक्षेप कार्पण्ये,
आत्मनिक्षेप कार्पण्ये,
षड्विध शरणागति,
षड्विध शरणागति।
और कोई?
अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षसीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, शरणागति।
और कोई माताओं में? क्या हालत है देखिए हमारा, कितने लोग दीक्षित भक्त है? हाथ उठाई। दीक्षा लिया मतलब कृष्ण का शरण लिया कि नहीं? तो शरण का विधि नहीं मालूम तो बहुत डेंजरस है, मालूम करना चाहिए। तो षड्विधा शरणागति, ये छह शरणागति के छह लक्षण है। सबसे पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः। दूसरा क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम्। तीसरा क्या है? అనుకూల సంకల్ప ప్రతికూల స్వర్జనం రక్షస్యతి ఇది విశ్వాసో. చౌథ గోప్తృత్వే పాద్మే ఆత్మనిక్షేప చట తార్పణ్య. ठीक है, तो ये जो छह चीजें हैं भगवान का शरण लेने की विधि है. तो सबसे पहला है अनुकूलस्य संकल्प. हमेशा कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज बोलने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या मेरी मेरा ये जो कार्य करना मेरी भक्ति के लिए सहयोग रहेगा कि नहीं, तभी वो कार्य करने जाएगा. कोई भी चीज को स्वीकार करने से पहले, घर खरीदने से पहले, विवाह करने से पहले, कोई स्कूल जाने से पहले, कॉलेज ज्वाइन करने से, नौकरी ज्वाइन करने से, कुछ भी करने जाएंगे क्या सोचना चाहिए, मेरा ये जो कार्य है इसके ये मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, ये सोचना चाहिए. अनुकूल है तो करो, अगर वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो क्या करना चाहिए. जैसे आप जाओगे टीवी खरीदने जाओगे तो क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो डर लग रहा है ना बोलने के लिए. बहुत डर लग रहा है, क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हो आप. लेकिन हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज को स्वीकार करते हैं, हम क्या सोच के स्वीकार करते हैं, इससे मेरा फायदा होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये सोच के हम चीजों को स्वीकार करते हैं. लेकिन शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, सबसे पहला अंग क्या है, कि हम वही कार्य करेंगे, वही चीजों को स्वीकार करेंगे जो मेरे भक्ति के लिए. अभी क्या है वो जो छह चीजें जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, बताइए. वेरी गुड, जोर से बताइए. उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. तो इसमें सब कुछ आ गया ऑलमोस्ट, कि हमको क्या क्या कार्य स्वीकार करना चाहिए भक्ति के अनुकूल के लिए. अगर आप जब ऐसा भी बता रहा था उस विषय में, आजकल किसी से पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो शनिवार के शाम को, बोलेंगे शॉपिंग के लिए जा रहे, बोलते कि नहीं शॉपिंग, नया वर्ड निकला है. पहले बोलते थे मंदिर जा रहे, व्यापार करने जा रहे, अभी आजकल नया शुरू हुआ, क्या हुआ, शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. तो उनसे पूछिए आपको क्या खरीदने जा रहे हो, जाके देखेंगे क्या खरीदना है, इसका अर्थ क्या हुआ, उनको कोई चीज जरूरत नहीं है, उधर गए जो चीज अच्छा लगा उसको उसको बुद्धिमान कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, महामूर्ख. पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जब बाजार जाते थे जाने से पहले लिखते थे क्या क्या चीजें चाहिए, लिस्ट बनाते थे और वापस उस लिस्ट को जांचते थे कि सच में मुझे जरूरत है क्या. अगर 25 आइटम लिखते थे उसमें से 25 को 15 बना के जाते थे, जो जरूरत है वही चीज. अभी क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो सीधा जाएंगे देखेंगे क्या क्या चाहिए, کیا چاہیے وہ لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے وہ. شنیوار کو خوب سارا مارکیٹنگ کر کے لایا، سب کچھ بہت خرید کے لایا، شاپنگ کر کے آیا، سوموار صبح 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 ری یہ چاہیے، نمک چاہیے. لیکن شنیوار کو بہت سارا چیزیں خریدا، بہت سارا چیزیں کھایا، ہاں بہت سارے چیزیں خریدا، پیزا کا بیس خریدا، سب کچھ خریدا، لیکن نمک نہیں خریدا. یہ ہماری اوستھا ہے. ہم بہت سارے چیزوں کو سویکار کرتے ہیں لیکن میرے بھکتی کے لیے انکول ہے کہ نہیں، یہ کبھی وچار نہیں کرتے. اگر آپ یہ چھوٹا سا وچار کریں گے نا، میری بھکتی کے لیے کیا انکول ہے، وہی انکول چیزوں کو میں کروں گا، انکول چیزوں کو ہی میں خریدوں گا اور سویکار کروں گا. اگر آپ یہ چھوٹا سا فارمولا سویکار کرو گے اپنے جیون میں نا، آپ کو بہت سمے بچے گا اور بہت پیسہ بھی بچے گا. اگر کسی کے پاس جاؤ دان مانگنے کے لیے، کیا بولیں گے؟ پربھو جی بہت ٹائٹ چل رہا ہے. آپ بولیے مندر میں آنے کے لیے، پربھو جی سمے نہیں ہے. کیوں سمے نہیں ہے؟ کیوں مندر میں دینے کے لیے، آپ دان دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے؟ اس کا کارن کیا بتائیے؟ کم کماتے ہو اس کے لیے، کام بہت زیادہ کرنا پڑتا اس لیے، کس کے لیے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو کاریہ کرنے کے پیچھے آپ سدھانت یہ نہیں رہا. کیا نہیں رہا؟ انکولسیا سنکلپ. مجھے بھکتی کے لیے کیا انکول ہے، اس کو وچار کیے بنا آپ کرنے لگے، خریدنے لگے، سب کچھ اپنا جیون کا کاریہ کرنے لگے، یہی سب سے پہلا درگھٹنا اپنا جیون کا. اگر آپ جیون میں یہ کیول یہ فارمولا یوز کرو گے، انکول سنکلپ کال اسی کو یاد کرو گے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کم 50% لوگ ہیں جو روز صبح منگل آرتی آ سکتے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ادھکانش لوگ جو ہیں وہ صبح دن بھر سنڈے کو دن بھر مندر میں رہ سکتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں ستسنگ کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو، روز جا کے کہیں نہ کہیں کسی کو پرچار کر سکتے ہو، اتنا سمے ملے گا آپ کو. آپ کے پاس اتنا دھن ہوگا، کوئی چیز دینے کے لیے آپ کو دو بار سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گا. کیول کاری ایک فارمولا یوز کرو گے، کیا ہے وہ؟ انکول سے سنکلپ. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا گھروں میں، اگر کوئی وستو جو کام کا نہیں اگر گھر میں ہے، وہ جو ہے اس کے وجہ سے لکشمی گھر میں نہیں آتی، ایسا بولا جاتا تھا. اس لیے دیوالی کے پہلے گھر کو صاف کیا جاتا ہے. کیوں کیوں صاف کیا جاتا ہے بولیے؟ سب کچرا. کچرا کس کو بولتے ہو آپ؟ کچرا کس چیز کو بولتے ہو؟ کچرا جو کام کا نہیں ہے اس کو کچرا بولتے ہیں. جو بھکتی کا کام کا نہیں وہ کچرا ہے. انکول سے سنکلپ کا پرتیکول سے ورجنم کا ارتھ یہ ہے کہ جو بھکتی کے لیے جو کام کا نہیں ہے وہ کچرا ہے، تو کیا کرو اس کچرے کو؟ آپ دیکھو گھر میں کتنا جگہ ہوگا، گھر میں ہی نہیں دل میں بھی بہت جگہ ہوگا. بہت سارے کچرے کو گھر میں بھر کے رکھے ہیں، ہمارے شریر نامک گھر میں بھی، ہم جس جگہ گھر میں رہتے ادھر بھی. آپ ایک ایکسرسائز کرو آج گھر واپس جانے کے بعد، ایک ایک چیز کو دیکھو، کام کا ہے کیا میرے بھکتی کا؟ کام کا ہے تو رکھو، اگر کام کا نہیں ہے تو پھینک دو، آپ کا 70% گھر خالی ہو جائے گا. تھوڑا دم بھی دے سکتے ہو اگر آپ پتی یا پتنی ہیں تو بھی، میرے بھکتی کے لیے کام میں ہو تو رہنا نہیں تو ڈر کے مارے کریں گے بھکتی. بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس معاملے میں. لوگ بولتے بھکتی کرنا بہت مشکل ہے، نہیں مشکل نہیں، ہم نے اس کو جٹل بنا کے رکھے ہیں، یہی تکلیف ہے. جیسے آپ سب لوگ اسکول میں گنت پڑھے ہوں گے، میتھمیٹکس، कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, बच्चा जो है वो सॉल्व करते गया एक घंटा करते गया नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, उसका पिता जाके दो स्टेप में सॉल्व कर देगा। उसको क्यों मुश्किल लगा? क्योंकि बहुत सारे कचरा भर के रखा था उसके अंदर, उसने ये किया हंगामा करके वही छोटा सा समस्या को उनने बड़ा बना के रखा। असलियत में हमारा जीवन जो है बहुत सरल है, लेकिन हमारी मूर्खतावश जो चीजें आवश्यकता नहीं है उसको घर में रख के हमने क्या किया, हमारे जीवन को बहुत जटिल बना दिया, और जो सरल भक्ति है उसको भी जटिल बनाया, कॉम्प्लिकेट बनाया, मुश्किल बनाया। प्रसाद देना कौन सी बड़ी बात है, भगवान का नाम लेना इतना सरल चीज है, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? बहुत यही मुश्किल होता है। बहुत साल पहले एक मेरे मंदिर के बहुत सीनियर भक्त, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा प्रभु जी जब हाथ को जब जपमाला में डालता हूं ना ऐसा लगता है अंदर बिच्छू है। तुलसी माला है लेकिन उनको ऐसा लग रहा है बिच्छू, कब निकालो कब खत्म करो, ये क्यों लगता है? क्योंकि यही फॉर्मूला हम अपने जीवन में वापरते नहीं, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान पड़ा है आपके घर में जो बिल्कुल बेकार है, उसकी वजह से लक्ष्मी नहीं आती। जिस प्रकार लक्ष्मी नहीं आती जिस घर में बेकार जी सामान पड़ा है, उसी प्रकार अगर हम जो बेकार चीजों को अपने पास रखेंगे जो हमारे भक्ति का काम का नहीं है, भक्ति देवी हमारे घर में नहीं आती, हमारे हृदय में नहीं आती। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये दो नियम को पालन करना है जो लिखा है इधर। सबसे पहला कौन सा है? अनुकूलस्य संकल्प, जो चीज जो भक्ति के लिए सही होगी उसी को स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है क्या करो उसको प्रतिकूलस्य वर्जनम, क्या करो। ये करने के थोड़ा सा मन को थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन आप करके देखोगे तो आपको लगेगा मन भी बहुत हल्का हो जाएगा। जब आप सफर करते हो ट्रेन में स्टेशन में क्या लिखा रहता है, लेस लगेज मोर कंफर्ट, ट्रैवल लाइट, कम सामान ज्यादा सुखी सफर। वैसे ही जीवन भी एक सफर है, भगवान को प्राप्त करने का सफर है, और उसके लिए क्या करना होगा, ये भोजा जो है जो बेक अवांछित चीजें जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना है, त्याग करना है, एकदम बिल्कुल जरूरी है उन्हीं चीजों को स्वीकार करना है। ये शरणागति का पहला दो अंग है। हम लोग बोलते हैं ना जी भगवान का शरण लिया हूं, भगवान का जब से शरण लिया हो ना तब से बहुत अच्छा होने लगा है। क्या अच्छा होने लगा? जय श्री राधा गिरिधर भगवान जयनाथ बोल, बहुत अच्छा होने लगा। तो जी मुझे ये मिला, कुछ गड़बड़ है। जो जरूरी नहीं है उन चीजों को आप स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब है भगवान का शरण नहीं लिए हो, शरणागति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप ये ध्यान रखे, आप बोल रहे हो भक्ति तो चल रहा है ना, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शरण की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति ने पूछा भगवान के शरण लेने की क्या जरूरत है, भक्ति कर रहे हैं ना आप। ये बात स्वीकार जानिए कि शरणागति जो है ये नवधा भक्ति जो है ना, न श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दासन साक्षी मातुम, ये सब चीज में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का अर्थ क्या है? हर चीज में ये शरणागति का अंग रहता है। शरण भगवान का शरणागत हुए बिना कीर्तन कीर्तन नहीं है, भगवान का शरण लिए बिना श्रवण श्रवण नहीं है। जैसे पिताजी पुत्र को बोलते हैं, बेटा जरा ये काम कर देना, वैसे का वैसे बैठा है। तो बेटा सुनो ना, मैंने सुन लिया, तो इसको सुनना बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। पिताजी का शरण लेके सुनना सुनना बोला जाता है। वैसे ही भगवान का नाम कीर्तन करना, कीर्तन करने का अर्थ क्या है, शरण लेके कीर्तन करना। श्रवण का अर्थ क्या है, शरण लेके श्रवण करना। स्मरण का अर्थ क्या है, श्रवण ले शरण लेके। तो वैसे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भक्ति के अंग शरणागति के बिना जो किया जाता है वो भक्ति नहीं है। उससे कुछ फायदा मिलता है, सुकृति मिलता है, लेकिन भक्ति नहीं बोला जाता है। एक भक्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो शरणागति है। अगर ये शरणागति नामक गुण है तो हर प्रकार की योग्यता उनके पास आ जाती है। अगर शरणागति नामक गुण नहीं है, उनके पास अनेकों योग्यता होने के पर भी वो सब योग्यता वो अयोग्यता बन जाता है। इट बिकम्स ए डिस्क्वालिफिकेशन। क्यों? अहंकार। कुंती माँ क्या कहती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीर ये दमान मद पुमान नैवार्जित तभी त्वाम किंचन गोचरम। बहुत अमीर व्यक्ति है लेकिन भगवान का शरण नहीं लिया है। वही जो अमीरी है, वही जो उनका संपत्ति है, उनका दुख का कारण बनेगा, उनका अहंकार का कारण बनेगा, उनका नाश का कारण बनेगा। अगर एकदम बिल्कुल एकदम कंगाल है, कुछ भी नहीं उसके पास, अगर भगवान का शरण लिया है तो क्या होगा, वही उनका जो दुर्भाग्य भाग्य के रूप में प्रकट होगा। सुदामा का जीवन चरित्र जानते हो, लेकिन तो कृष्ण का शरण लिया है तो अगर उनके पास जितने भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, दुर्भाग्य उसका भाग्य का कारण बनेगा। अगर कृष्ण का शरण नहीं लिया है और उनके पास कितना ही भाग्य भी क्यों ना हो, वही भाग्य उनका दुर्भाग्य का कारण बनेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई चीज का स्मरण, कोई चीज का अगर चिंता अगर हमारा होना चाहिए, यही चिंता होना चाहिए कि मैं कृष्ण का शरण में कब जाऊंगा, शरण लेना है, आई विल टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तीसरा क्या है, रक्षसिति इति विश्वासो, रक्षसिति इति विश्वासः। इसलिए रक्षसिति इति विश्वासः, इति मतलब इसमें विश्वास। किसमें विश्वास, भगवान मुझे रक्षा करेंगे। He will protect me in all circumstances. जितना इस शब्द में विश्वास है, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, योगक्षेमं वहामि हम, कौन्तेया प्रतिजानिया नमे भक्ता प्रणश्यति मा शुचः। अनेकों अनेकों जगह भगवान ने इस बात को घोषणा किया। क्या घोषणा किया, आप डरो मत, मैं हूं। जैसे माता पिता है, एक बार बच्चा आके, बच्चा जो है वो रोज कहीं कहीं इधर उधर से पैसा मिलता है, 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा करके छुपा के रखता था। एक दिन घर साफ करते करते, बच्चे का कमरा साफ करते करते, माँ ने पकड़ लिया उस बच्चे को, वो पैसा मिला। बच्चा बड़ा डर गया, माँ ने पूछा ये कहाँ रखा है, कहाँ से रखा पैसा, इसको छुपा के रखे हो, कहाँ का है पैसा। बच्चे डरते डरते कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर पिताजी मुझे नहीं देखभाल करेंगे तो ये पैसा काम में आएगा ना। तो माँ ने गिन गिन के देखा तो उसके अंदर 150 रुपए थे। जब ये बात पिताजी को मालूम पड़ा, सुन रहे थे पीछे से, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। वैसे ही कृष्ण भी दुखी होते हैं। जब हम हमारा 2-3 लाख का बैंक बैलेंस, कुछ जमीन जायदाद, कुछ संपत्ति, कुछ अनुचर, इन लोगों का शरण लेते हैं, इन लोगों के विश्वास करते हैं, ये मुझे बचाएंगे। वो उसी प्रकार है, उनकी पिताजी उस बच्चे को 1 करोड़ का फ्लैट में रखे हैं, इतना हजारों लाखों रुपए खर्चा करते उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चा का विश्वास किस में है, वो 150 रुपए में है। यही हमारा जीवन भी है। कृष्ण हमको हवा दे रहे, पानी दे रहे, इतना सारा व्यवस्था किया, वो सब बात भूल जाइए, हाथ दिया, पैर दिया, पेट दिया, किडनी दिया, लिवर दिया, है कि नहीं? ये सब चीजें क्या कहीं से खरीद के लाए आपने? सब दिया है ना कृष्ण ने, लेकिन हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हमारा छोटा सा बैंक बैलेंस है ना, रोज देखते हैं, हाँ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसको। ये सब 1 सेकंड में खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास किस में है? इन लोगों में है, इन चीजों में है। विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। इसलिए पुलिसकर आलवार कहते हैं कि लोकस्य व्यसनाप अनोदकारो दासस्य किम न क्षमा। भगवान सारा जगत को देखभाल कर रहे हैं, जो उनके भक्त नहीं है। हाथी कौन सा भक्ति करता है बोलिए? भगवान का 100 किलो खाता है कि नहीं ब्रेकफास्ट में? उनको खिला रहे कि नहीं भगवान? चोर है, डकैत है, इतने सारे पापी लोग हैं, उनको भी भगवान देखभाल कर रहे कि नहीं? लेकिन ऐसे लोगों को जब देखभाल करते हैं, लोकस्य व्यसनाप अनोदकारो, आप कम से कम नाम तो एक बार ले रहे हैं ना, एक बार तो कम से कम करते हैं ना कोई मंदिर में तो बैठे हैं ना, कम से कम कुछ तो कर रहे हो ना भगवान के लिए, क्या उनको देखभाल नहीं करेंगे? लेकिन हमारा ये जो दुष्ट मन है वो किसके ऊपर विश्वास करता है? जो हम छोटा सा बना के रखे ना कुछ हा? एक बार मुझे अभी भी याद है, हाँ ये तो प्रेमवश को कार्य किया उन्होंने, जब मुझे नौकरी मिला था पास होने के बाद, पहला साल दूसरे साल की बात है, सर मेरा पगार था महीने का 1 लाख रुपए का पगार था, जब मैं जा रहा था मेरी दादी माँ है पीछे पीछे से आके मुझे एक छोटी सी पर्स दिया, तो ने कहा कि थोड़ी पूछ दिया, मैंने बोला क्या है, तो काम में आएगा इसको रखना। मैं उनके सामने ही खोला उसके अंदर 350 रुपए थे 10-10 रुपए के। तो एकदम मैं हंसने लगा, मैंने कहा इतना सारा पैसा आ रहा है और आप बोल रहे ये बचाएगा? नहीं नहीं बचाएगा, विश्वास रखना इसे बचाएगा। तो जो आपसे प्रेम करते हैं ना, और जो आप जिनसे प्रेम करते हो ना, इनके ऊपर विश्वास करना भी उसी प्रकार का विश्वास है। अस्तित्व में विश्वास किस पे होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तब मैंने कहा मैं जहां जा रहा हूं ना वो जहाज है, आप बताओ वो जहाज डूबेगा, ये 350 रुपए कौन से काम में आएंगे मुझे? तो मैंने कहा ये 350 रुपए जरूर लूंगा मैं। उस दिन उनको मंदिर में लेके गया, वही 350 रुपए में जपमाला और सब दिया और एक गीता दिया, बोला यही आपको बचाएगा। जप करना, 16 माला करना शुरू किया, आगे ज्यादा भी करने लगी। तो ये इवन इस भौतिक जगत के जो तथाकथित जो प्रेम है ना, जो प्रेम के संबंधी होते हैं, ऐसा अगर देखेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से मेरी जो दादी ने कार्य किया ना, उससे सारा जगत बोला देखो कितना प्रेम है, लेकिन भक्त को ये भौतिक जगत के जो भावुकता होती है उसके प्रति भी विश्वास नहीं होना चाहिए। कितना भी सुंदर क्यों ना लगे वो, कितना भी भावुकता भी क्यों ना लगे, ये जगत की जो भावुकताएं होती है ना, प्रेम के रूप में लोगों का प्रस्ताव होता है ना, वो सबसे धोखा देने वाली चीज है। उसके प्रति ज्यादा सतर्क होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर कोई और उस परिस्थिति में होता तो सच में वो एकदम इमोशनल हो जाता, देखो दादी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं, लेकिन ये प्रेम अज्ञान के ऊपर आधारित है, क्या फायदा उस प्रेम का। अगर सच में क्या करना चाहिए उस समय बताना चाहिए, इसके ऊपर ना आपको विश्वास करना चाहिए ना मुझे विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना है किसके प्रति? कृष्ण, क्योंकि वही एकमात्र हमारे रक्षक है। ही इज द ओनली सेवियर। कितने भी धन दौलत कुछ भी है वो कोई भी काम में आने वाला नहीं है। वो जाने से पहले उसको कृष्ण के काम में लगा दो, नहीं तो बहुत डेंजर। तो मैंने कहा कि ये पैसा, और आगे कन्वर्सेशन हुआ मेरी दादी से बताऊंगा, मैंने कहा कि ये पैसे आपको कहां से मिले? ने कहा कि बहुत वृद्ध थी वो, इतना होशियार नहीं थी, मतलब घर का काम वगैरह करती थी, लेकिन पैसे ऐसे में बहुत सरल थी, सरल भावना की थी। ने कहा जो दूध के प्लास्टिक पेपर आते हैं ना, हाँ, वो बचा के रखती थी, उसको बेच के पैसा बनाया था। तो मैंने पूछा कि पैसा क्यों बनाया, क्यों रखा, क्या जरूरत था? उन्हें कहा मैं सोची कि मेरे जो अन्य लोग हैं साथ में, मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ेगा तो पैसा नहीं देंगे, इसलिए बचा के रखी थी। मैंने बाद में उनको जपमाला हाथ में पकड़ा के बात कहा कि मान लो आपको मृत्यु आएगा, क्या वो दवाई आपको बचाएगा? तुमने कहा नहीं। मैंने कहा आगे ये प्लास्टिक पावर है ना, वो भी बचा के मत रखो, क्योंकि जब आप मरोगे आपका ध्यान किस में रहेगा? वो प्लास्टिक पावर में रहेगा। बाद में पता नहीं क्या किया, क्योंकि मैं जहाज में चला गया, उसके बाद सीधा आके ज्वाइन किया। लेकिन बात ये है कि हमारा विश्वास ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों में है, हम सोच भी नहीं सकते। जो इसकी सृष्टि करता है उसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसने सृष्टि को किया इस सृष्टि के छोटे छोटे चीजों में विश्वास है। ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और ध्यान रखिएगा। कृष्ण ही अवश्य रक्षिवे कृष्ण रक्ष स्थिति इति विश्वास, ये शब्द कृष्ण मुझे अवश्य रक्षा करेंगे, इसमें विश्वास, इसको भक्त कहा जाता है। ही इज अ डिवोटी। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, पहली बार जब गए उनके हाथ में कितना पैसा था? 40 रुपए के। आजकल आपके घर से मंदिर भी नहीं आता, बीच में कुछ हो गया तो कितना सिक्योर। प्रभुपाद जी अमेरिका, ना जान ना पहचान, उनका भरोसा किसके ऊपर था? उन्हें रक्षा किया, ही हेल्प्ड, ही प्रोटेक्टेड। ये शरणागति का तीसरा अंग है, रक्षस्थिति विश्वास। जो भगवान में विश्वास करता है, इन शब्दों में विश्वास करता है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, और मृत्यु का भी डर नहीं रहता, कोई भी चीज का डर नहीं रहता, एकदम निर्भय रहता है। परिवार वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई भी चीज का डर नहीं रहता। निर्भय हो जाता है। पांडव वनवास में थे, आराम से सो रहे थे रात के समय, दुर्योधन महल के बीच में था, पूरा सेना थी, 14 साल में एक बार भी नहीं सोया। क्यों? पांडवों का विश्वास था कृष्ण में। क्या विश्वास था? कृष्ण अवश्य मुझे रक्षा करेंगे। अभी तीसरा हुआ, राक्षस विश्वास हो, बाद में गोप्तृत्वे, गोप्तृत्वे वर्णम, कृष्ण को स्वीकार करना। कृष्ण को स्वीकार करना किस रूप में? मेरे एक बंधु के रूप में स्वीकार करना, एक गोपनीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना, जिसको मैं अपने गुप्त चीजें उनको बता सकता हूं। अपने हृदय की बातें आप किसको कहोगे? गोपनीय व्यक्ति को कहोगे कि नहीं? अपने एकदम नजदीक में उनको कहोगे? अगर आपसे पूछेंगे आप कौन हो, आपका नाम बताएंगे, क्या करते हो, सब बताएंगे, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो सबको नहीं बताएंगे, है कि नहीं? आप के पास कोई आए, मित्र है, उनसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्या क्या आपके बारे में, बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें नहीं बताएंगे, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके परिवार वालों के साथ क्या संबंध है, कैसा है, क्या क्या बातें आप अपने बच्चे से किया, आपकी पत्नी से किया, सबको बताओगे? नहीं को? लेकिन बताओगे, किसको बताओगे? आप जिनको एकदम बिल्कुल करीब समझते हो, जिनको अपना बंधु समझते हो, उसको सब कुछ बताओगे। उसी प्रकार एक भक्त को अपनी सारे बातें कृष्ण को बताना है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति जो हमारे बंधु है। कृष्ण को एक बंधु के रूप में, एकदम निकटतम व्यक्ति के रूप में समझना। हमेशा एक भक्त को ऐसा जीना चाहिए ताकि कृष्ण मेरे साथ में ही है, ही इज विथ मी, मेरे एकदम बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है। अगर कोई तो मान लो कि दुख लगा, आगे किसको बोलना चाहिए? जनरली स्वाभाविक तरीके से आप किसको बोलते हो? कोई पति है तो पत्नी को बोलते, पत्नी तो पति को बोलेंगे, और अन्य लोगों दोस्तों को बोलेंगे। लेकिन आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा मालूम है? वही बात का फायदा लेके कुछ ना कुछ होगा, बहुत डेंजरस है। इसलिए उनके साथ थोड़ा सा नजदीक भी रहो, दूर भी रहो। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, सख्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने नये नृपजने, कांता जने दृढ़ता ये चम कलासु पुरुषा लोकस्थि कुशलास्ते स्वैव लोकस्थिति। अपने बंधुजन होते ना, प्रिय बंधुजन, उनके साथ रीति के अनुसार चलना चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने, थोड़ा सा उनको दिखाना चाहिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर सच में प्रेम किया तो गया काम से। भागवत में ऋषभदेव कहते हैं ये परिवार वालों से जो प्रेम है वो एक एक घांट नहीं है, डबल घांट है। हमारी जो इंजीनियरिंग के कोर्स में एक सब्जेक्ट है सीमेंटशिप करके, उसमें एक सब्जेक्ट है कैसे गांठ बांधना चाहिए। जहाज आता है तो बंदर के साथ बांधना पड़ता है ना, रस्सी को बांधना पड़ता है ना। अलग अलग प्रकार के घाट होते हैं, अलग प्रकार के रस्सियों का अलग प्रकार का घाट होता है, उसको कहते हैं डबल एंडेड नॉट। हृदय ग्रंथि माहुर, हृदय ग्रंथि जो है इस प्रकार का है, ग्रंथि किस प्रकार का है? ये डबल एंडेड है। अगर एक ढीला पड़ता है तो दूसरा टाइट हो जाता है, और दूसरा टाइट हो, दूसरा ढीला पड़ता है तो पहला वाला टाइट हो जाता है। यही है ग्रंथि परिवार के साथ, ये पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है इस संसार का, वो इसी प्रकार का डबल एंडेड ग्रंथि है। क्या बोलेगा पति? पत्नी को बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं। पत्नी बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं। पहले पहले होता है, बाद में तो पता नहीं, बाद में तब शुरू होता है असलियत। जब गांठ लग गया ना, उसके बाद जब पति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे कहां फंस गया, चलो इधर से मतलब एक गांड ढीला पड़ा तो दूसरा टाइट हो जाता है, आपकी पैरा कैसे जी सकते हो, रोना शुरू करेगा तो वापस क्या होगा, ये भी टाइट हो जाता है। कुछ समय के पत्नी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कहाँ फंस गया इसके साथ, अभी चले जाऊंगी, बाद में पति बोलते हैं अब मुझे कौन खिलाएगा, तो फिर वो भी टाइट हो जाता है। अगर मान लो कोई वस्तु के साथ गांठ है तो थोड़ा ढीला पड़ गया तो छोड़ दोगे, क्योंकि उधर से कुछ है ही नहीं। अभी संसार के व्यक्तियों के साथ जब गांठ लगता है ना, सब संबंध लगता है ना, ये डबल एंडेड है, एक ढीला है तो दूसरा टाइट हो जाता है, तो दूसरा टाइट हो जाता है तो एक दूसरे ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, एकदम एक दूसरे को फंसा के रखने वाली बात है। ऐसा स्थिति है, ये डबल नॉट है हृदय ग्रंथि। इसलिए जैसा है वैसा रहने दो, और क्या करो, नजदीक भी रहो और दूर भी रहो। अगर सच में अगर आपका प्रिय अगर कोई व्यक्ति हो, कृष्ण है, तो कृष्ण को ही एकमात्र प्रिय व्यक्ति करके समझना, ये शरणागति का कौन सा लक्षण है, चौथा लक्षण। आपके दिल की बात है, जो भी है, आपको जो भी कहना है सब कृष्ण से कह सकते हो, कृष्ण से बातचीत कर सकते हो, यू कैन डू दैट। रोना है तो कृष्ण के पास रो, हंसना है तो कृष्ण, बाकी सब जितने करना है हंसना रोना परिवार वालों के साथ मत करो, क्योंकि आप हंसोगे तो रुला देंगे, आप रोगे तो हंसाएंगे, यही होता है। मान लो कि आप रो, मैं ऐसे परेशान हूं, ऐसे बोलो घर में बोलो, अरे क्या है करके हंसा देगी आपको, आप हंसो तो क्या करेंगे, ये जीवन का रीति है, बहुत डेंजरस है। एक चीज जो हमारी अमानत है, क्या है वो, हमारा प्रेम और विश्वास, वो केवल कृष्ण को दीजिए, बाकी सब जिसको देना दे दो, चलेगा। पैसे से खुश हो जाते पति पत्नी बच्चे, तो कर दो, थोड़ा काम करके खिलाने से पति खुश हो जाते कर दो, लेकिन प्रेम और विश्वास किसमें, कृष्ण में। ये दो चीजें, ऐसी चीजें आप किसी को मत दीजिएगा। अगर हम मान लो कि ये दो चीजें किसी को भी देंगे भी ना, सस्ते दाम में खरीदेंगे, सस्ता कर देंगे, समझ लीजिएगा। लेकिन आप कृष्ण को दोगे, कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, सबसे अमूल्य वस्तु है कृष्ण। ले हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम क्या करते हैं, हमारा ये प्रेम और विश्वास सस्ते में बिका देते हैं, और उसको खरीद के उसके ऊपर अवहेलना भी करते हैं। आप हाथ मत उठाइए, लेकिन आपको ये बात सही रूप में मालूम है, आपने जिससे प्रेम किया वही व्यक्ति ने आपका इज्जत डुबाया है, अवहेलना किया, हंसा है आपके ऊपर। पिताजी पुत्र से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन वही लड़का जब थोड़ा सा बड़ा होता है, मित्रों के साथ में बैठ के पिताजी के बारे में क्या बात करता है, यहाँ आ गया है बुढ़ा आ गया, देखो। जो लड़का घर आता है, पिताजी बोलते हैं बेटा कैसे पढ़ाई किया, कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना, यानी वो पिता ने अपने बच्चे को प्रेम करके क्या किया, उस प्रेम का, उस प्रेम जो है उसको, उस लड़के ने क्या किया, उस प्रेम को बाजार में सस्ते में बेच दिया। लेकिन वही प्रेम और विश्वास जब आप कृष्ण को दोगे, तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को बिका देते हैं आपको। दैट इज द नेचर ऑफ कृष्ण। हमारा दुष्ट मन है ना, दुष्ट बुद्धि है, इसके वजह से हम जो अमूल्य रत्न है हमारा आत्मा का, विश्वास और प्रेम आत्मा का अमूल्य लक्षण है, गुण है, उसको क्या करते हम, सस्ते में बेच देते हैं, उपहास का कारण बनते हम। इसलिए दो चीजें मत दो, जिम्मेदारी के रूप में लड़के को पढ़ाना है पढ़ा दो, पति को देखभाल करना है पति को देखभाल करना है, बाकी लोगों को देखभाल करना है, बाकी सब चीजें दे दो, सुख सुविधा जो चाहे जितना हो सके दे दो, लेकिन प्रेम और विश्वास वो केवल कृष्ण को दो। ये शरणागति का कौन सा अंग है? चौथा। वर्णम आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप शरणागति कौन सा अंग है? ये पांचवा अंग। आत्मनिक्षेप का अर्थ क्या है? संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर निर्भर करना, यानी कृष्ण को समर्पित करना, टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। कैसे? कृष्ण के ऊपर निर्भर करना, आत्मनिक्षेप करते पूर्ण तरीके से कृष्ण के ऊपर निर्भर करना। देखिए, ये जगत का निर्माण हुआ है, उसका जो डिजाइन जो बना है वो कैसे बना है मालूम है? एक पतंग जानते हो, पतंग जब उड़ता है, जब रस्सी छोड़ा जाता है ना, वो पतंग ऐसा ऐसे उड़ता है, हाँ हाँ हिल रहा है वो, लेकिन अचानक से जब डूब रहा होगा तो पतंग को क्या करता है व्यक्ति? खींचता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है उस पतंग को मैं फ्री हूं, वह आनंद में हूं, लेकिन मालूम नहीं रस्सी से कोई कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता है ना, उसे आ सकता है बस मैं कंट्रोलर हूं, पैसा है, ईश्वर है, सब कुछ एकदम बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूं वैसा हो रहा है, लेकिन अचानक पूरा पासा उलट पलट जाता है। अचानक आपको मालूम नहीं पड़ता कब कैसा होगा। ये क्यों होता है मालूम है? ये भौतिक प्रकृति आपको समझाने के लिए एक लाफा मार के समझाती है, यू आर नॉट द कंट्रोलर। जब आपसे जो आपने जिनसे प्रेम किया, आपने देखभाल किया, जब वो बड़ा हुआ लड़का है, कोई और लोग हैं इनसे बड़ा है, जब वो लोग उल्टा जवाब देते ना आपको, ये समझ लेना कि दुर्गा जी ये भौतिक प्रकृति आपको एक जोर से छाटा मारी है, अभी उठो। सो रहा था ना इतना दिन, ये सोच रहा था कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं, अभी समझो तुम ईश्वर नहीं हो, ये भौतिक प्रकृति का छाटा है। क्योंकि जब तक ये एकदम जोर से छाटा नहीं लगता ना, तब तक हम उठते नहीं है, सोते रहते हैं, सोचते हैं हाँ आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंचार्ज, मैं ईश्वर हूं, ईश्वरो हम भोगी, ये भावना हमारे हृदय में रहता है। जब जोर से लात मारता है कोई भौतिक जगत का, ये लात जब पड़ता है तब होश में आता है, हाँ मैं कंट्रोलर नहीं, मैं भोगता नहीं, तब कृष्ण के पास आता है। इसलिए वो चाटा खाने से पहले भगवान के पास आ जाओ, वो मार खाने से पहले समझो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। अगर पहले ही समझे होंगे तो तैयार है उसको स्वीकार करने के लिए, तो इतना तकलीफ नहीं होती। मान लो आप कहीं जा रहे हो, कुछ समस्याएं आने वाली हैं करके आपको मालूम नहीं है, तब वो आती है समस्या तो बहुत तकलीफ होती है। अगर आपको मालूम है वो समस्या आने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो, वह समस्या आने पर भी वो समस्या नहीं है, है कि नहीं? जैसे रास्ते में जा रहे हो, आपको मालूम है बारिश आने वाला है, तैयार नहीं हो तो बारिश आने पर तकलीफ होती है, लेकिन आपको मालूम है कि बारिश आने वाला है, आप पहले से छाता लेके जाओगे तो बारिश आने पर भी बारिश का प्रभाव। उसी प्रकार जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका जीवन में सब कुछ चल रहा है, बराबर चल रहा है, उसी समय तीव्रता से भक्ति करो, उसी समय तैयार हो जाओ। जब समस्या आएगी तो समस्या समस्या ही नहीं रहेगा, लेकिन जब समस्या आएगी तब करने जब शुरू करोगे बहुत लेट हो गया है। एक किताब है, चाइना का एक मिलिट्री कमांडर ने लिखा था, द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, बहुत सुंदर किताब है, लेकिन उसने अपने धनुर्वेद से ही लिया था उसका पूरा मैटर। उसका कैप्शन था, उसका एकदम बिल्कुल एक लाइन था, वाइल इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, वाइल इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, शांति के समय युद्ध की तैयारी करो, युद्ध के समय शांति का तैयारी करो। बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है कि नहीं। अभी चलिए, वो तो युद्ध के बारे में बात कर रहा है, मैं इधर कृष्ण भक्ति की बात कर रहा हूं। अब वही स्टेटमेंट लेंगे जब आपका जीवन में सब कुछ बराबर चलता है ना, जब शांति है ना, उस समय मृत्यु नामक युद्ध की तैयारी करो। अगर वैसा करोगे, जब मृत्यु नामक या तकलीफ नामक जब युद्ध आएगी, उस समय आगे की शांति का तैयारी करोगे। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु नामक तकलीफ तो आएगा ही, बाकी सब आए नहीं आए, अभी शांति है, अभी समय है मृत्यु नामक युद्ध की तैयारी करो। अगर करोगे मृत्यु नामक युद्ध के समय, भगवान की धाम में शांति का प्लान कर सकते हैं। वाइल इन प्लीज प्लान फॉर वॉर, वाइल इन वॉर प्लान फॉर पीस। अभी शांति का समय है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ बराबर है, रहने का थोड़ा घर है, कुछ तो भगवान की वजह से कुछ तो कुछ मिला हुआ है। अभी क्या करो, तीव्रता से भक्ति करो। करोगे जब समस्या आएंगी, उस समय समस्या का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया है आत्मनिक्षेप, संपूर्ण रूप में शरणागत करना। दुख के समय शरण लेना भी अच्छा है, लेकिन बहुत लेट हो गया है, डोंट वेट फॉर दैट। अभी इसी समय करो, सरेंडर योर सेल्फ टू कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, अस्सी साल का था। प्रभुपाद ने कहा बस अभी अब भगवान के शरण लेना है। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आ जाइए। अभी क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा करोड़ों की संपत्ति थी, मैंने अपने सब बच्चों को दे दिया है, अभी जीवन में कुछ करना नहीं है, अभी शरीर भी ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मैंने सोचा कि ये भगवान के शरण में आ जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब भगवान को अर्पण करोगे, सुंदर स्वस्थ फूल को अर्पण करोगे या सड़ा हुआ चीज को अर्पण करोगे, ताजा चीज को अर्पण करोगे, है कि नहीं। इसलिए अभी आपके पास शक्ति है, मन बराबर काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रहा है, यही टाइम है। आगे आने वाले जो भयानक स्थिति का इंतजार मत करो, दिस इज राइट टाइम टू टेक शेल्टर। हमेशा क्या रहता है, प्रोकैस्टिनेटिंग अपराध माना जाता है। प्रोकैस्टिनेटिंग मतलब आज करे सो कल कर, कल करे सो कभी ना कर, कलयुग का दोहा है। आज करने वाला चीज जो है, अब करने वाला चीज जो है बाद में करेंगे, आज करने वाला चीज जो है कल करेंगे, कल वाला चीज तो देखेंगे। ये भक्ति जो है अब करने वाली चीज है, तो कब करना चाहिए, अभी करना चाहिए। ऐसे दोहे में कहा है, कर आज करे तो अब कर, करे तो आज कर, ऐसा है ना। तो अभी भक्ति ऐसा चीज है जो अभी करने वाली चीज है, उस दोहे में वो नहीं लिखा अभी करने वाली चीज को कब करना है। ये भक्ति है वही चीज है जो अभी करने वाला है, वो भक्ति आज करने वाली चीज नहीं है। उन्होंने जो दोहे दिखा, कौन लिखा, किसने लिखा, कोई कवि ने लिखा, मुझे याद नाम नहीं, लेकिन अच्छा लिखा जो भी है, लेकिन उसने ये जिक्र नहीं कि अभी करने वाली चीज क्या है। अगर अभी करने वाली चीज अगर कोई है तो क्या है, वो कृष्ण भक्ति है। इसलिए कुलशेखर आलवार बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं, जो प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से गाते थे, बाथरूम में गाते थे प्रभुपाद जी, इसको बाथरूम मतलब बाथरूम सिंगर। स्टेज तो मिलता नहीं गाने को, बाथरूम में से कोई है नहीं, उस समय गाएंगे हम लोग। उसको तो बाथरूम सिंगर, हर पल तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ये श्लोक को गाया करते थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अधैव मे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तैः कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। तो ये श्लोक में कुलशेखर आळ्वार कहते हैं कि अधैव मे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तैः कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। कुलशेखर आळ्वार इस बात को कहते हैं, हे भगवान कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कृष्ण के जो चरण कमल जो है पंजर जैसा है कि नहीं, नेट जैसा है, चरण ऐसा है, तो उन चरण कमलों का जो जो पंजर है, जो नेट है, विशदो मानस राज हमसा, मेरा मन मेरी जो प्राण है उसके अंदर प्रवेश कर ले, यानी मेरा मन पूर्ण तरीके से कृष्ण का स्मरण कर ले, यानी अभी अधैव में विषतु, अधैव में अभी हो जाए, दूसरे शब्दों में अभी मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है, आपका नाम बराबर ले सकता हूं, अभी मेरे पास धन है, अभी सेवा कर सकता हूं, अभी मेरे पास परिवार है, उनको भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, ना अभी क्या है, तो बाद में देखेंगे। अधैव मतलब अभी, अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? अगर मरने तक रुकूं, कफ वात पित्त ही, कफ वात पित्त हमारे शरीर से बना है ना, कफ वात पित्त से बना हुआ है ये जो शरीर है, कफ वात पित्त कंठा अवरोधन विधो, मेरे कंठ में आके अवरोधन उत्पन्न करेगा, इट बिकम ए ब्लॉक इन माई थ्रोट, तब स्मरणम कुतस्ते मैं कैसे नाम ले सकता हूं। अभी हमारे पास ताकत है नाम लेने की, अभी ले लो, अभी मेरे पास धन है अभी दे दो, अभी मेरे पास शक्ति है अभी सेवा करो, कल करेंगे। अगर उस दोहे के अनुसार आज करे तो अब कर, कल करे तो आज कर, तो अब करे तो वो कितना आतुरता से करना चाहिए, अभी एक्चुअली कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ वो है, आज करने वाला चीज को अब करने के लिए बोल रहे हैं ना, अब करने वाला चीज को कब करेंगे, असियत में कर लेना चाहिए था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर भक्त को पछताना चाहिए, बचपन से एक भक्ति क्यों नहीं किया मैं। कुछ भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मुझे खाली 5 साल पहले पता लगता ना मैं आपके साथ आ जाता। अच्छी भावना है, अच्छी भावना है। एक्चुअली हमको ये बात कल कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी देर हो गया, अभी करो, इज अ टाइम, अब करने वाली चीज है, एक्चुअली कल करने वाली चीज था लेकिन हुआ नहीं, तो आज करो, इतना वातुरता से करो, ये कुलशेखर आळ्वार कहते हैं, ये आत्मनिक्षेप, इमीडिएट सरेंडर, सरेंडर नाउ, डोंट वेट फॉर टुमारो, कल का कोई भरोसा नहीं, मौका है करो, बाद में। आखिरी कौन सा चीज है? कृपणता, कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है सरल भाषा है नम्रता, दैनता, दीनता। तो दीनता शरणागति का आधार है, बेस। जो बिल्डिंग बनती है ना वो किसकी ऊपर टिका है? फाउंडेशन। तो हमने अभी जो 5 बातें चर्चा किया है वो 5 के 5 बातें है, ये 5 माले की बिल्डिंग है, तो ये जो है बेसमेंट है, या ये जो फाउंडेशन है कौन सा? नम्रता। तो ये नम्रता बेसमेंट है या फाउंडेशन है, जिसके ऊपर अन्य जो भी बात है अभी तक कहा वो सब टिका हुआ है, उसके बिना बाकी सब करने भी जाएंगे उतना फल नहीं मिलेगा। इसे नम्रता होना अतिवश्यक है। नम्रता कब आएगी? नम्रता आएगी जब हम ये शारीरिक भावना से परे होंगे। ये जड़ है, ये सोचना कि मैं शरीर हूं जड़ भावना है, मैं और मेरा, यही हमारा अहंकार का कारण है। अहंकार का विपरीत शब्द क्या है? नम्रता। अहंकार क्यों है? मैं ये मानता हूं कि मैं शरीर हूं और ये शरीर से संबंधित वस्तुएं और शरीर से संबंधित लोग मेरा करके समझते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है, अहंकार है। इसलिए कुलशेखर आळ्वार एक बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं। इदं शरीरं परिणामपेशलम्, इदं शरीरं परिणामपेशलम्, पतत्यवश्यं शतसंधिजर्जरम्, किमोषधं पृच्छति मूढावराका वयम्, निरामयं कृष्ण रसायनं पिबा। जब तक हम नम्र नहीं होंगे तब तक कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। ये नम्रता आने के लिए बहुत सारे बातें हैं, लेकिन एक बात कहता हूं, वो है ये शारीरिक भावना से परे हो जाना। कैसे हो सकते हैं? आप ये सोचो, ये शरीर कभी भी पतन हो सकता है, अपने आप नम्र हो जाओगे। क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है ना, एबिलिटी है ना, वही हमारा अहंकार का कारण है। मैं कर सकता हूं, लेकिन कभी भी ये गिर सकते हो। क्या कर सकते हो? इतना जिम जाके आया, इतना बॉडी बनाया, वो कर सकता हूं, वो किया, लेकिन कल सुबह हॉस्पिटल में लेटा हुआ है तो पूछो क्या हुआ? मलेरिया हो गया है। मलेरिया का कीड़ा कितना बड़ा है मालूम है? मलेरिया का वायरस कितना बड़ा होता है मालूम है? वो एकदम इतना छोटा होता है। वो क्या कर दिया उस मलेरिया का कीड़े ने? जिम जाके इतना बड़ा बॉडी बना, उसको लेटा दिया। कहां गया सब उसका जिम बॉडी? कभी भक्त लोग पूछते हैं, नम्र कैसे हो गए? ये सोचोगे तो होंगे, एक छोटा सा कीड़ा आपका हालत ऐसा खराब कर सकता है, तो और क्या चाहिए नम्रता के लिए बताओ? और क्या चाहिए? बहुत अमीर व्यक्ति था, इतना करोड़ों पैसा है, वो मैं वो चाय कर सकता हूं, ये चाय कर सकता हूं, क्या हुआ? इनकम टैक्स रेट बढ़ गया, जेल में है। कल बोल रहा था वो कर सकता हूं, ये कर सकता, क्या हो गया अचानक? समझो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अहंकार करना मूर्खता है, फुलिशनेस। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो सकता है, इतिहास उसका साक्षी है। हम कुछ कर पा रहे हैं क्यों मालूम है ना? क्यों मालूम है? कृष्ण का अनुग्रह है। भौतिक कार्य भी कृष्ण का अनुग्रह है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। मैं हाथ उठा पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं ना। अगर सोचो कमल लोचन दास, हाँ, अगर सोचने लगे मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूं, ये कर पा रहा हूं, वो कर पा रहा हूं, कृष्ण का है आशीर्वाद, अनुग्रह है। अगर थोड़ा सा इधर उधर कृष्ण का ध्यान कहीं गया ना मेरे से, हाथ भी नहीं उठा सकता, पैरालिसिस हो सकता है, ऐसे पड़ा रहेगा, बोलने के लिए चाहते हुए भी नहीं बोल पाएगा। दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसको कृष्ण कॉन्शियस कहा जाता है कि कृष्ण का अनुग्रह से ही हो रहा है, नहीं तो मैं सांस भी नहीं ले सकता प्रभु। बाकी सब कार्यों को छोड़ो, हम खाते हैं तो हजम होता है कि नहीं? हम वही सोचते हैं हजम हो रहा है, मैं हजम कर सकता हूं, कोई बोलता है, लेकिन हो रहा है। क्यों मालूम है? कृष्ण का अनुग्रह है, जटराग्नि के रूप में है, हम वैश्वानरो भूत्वा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य यह है कि हम सोचते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक मधुमक्खी भी आ सकता है। कृष्ण का अनुग्रह है ये समझना हमारा नम्रता है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, शतसंधि सौ से बढ़कर अनेकों अनेकों संधियां हैं कि नहीं, हाथ पैर सब अभी मुझे मालूम है। मैं जब मंदिर ज्वाइन किया था बहुत हंगामा किया था, इधर किया वो किया वो किया, अभी टाइम आया 40 हुआ है, इट्स ऑलरेडी 40, पता लग रहा है अभी। सीढ़ियां चलता हूं तो पता लगता है, जब सीढ़ियां चला था कब चढ़ा कल रात को, चढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठूं, तब मैं सोच रहा था अभी शतसंधि जर्जरम बद्यत्यवश्यम, इससे ज्यादा हीरो मत बनो। ऐसे मैं अपने आप में बोला, डोंट बिकम बिग हीरो। शतसंधि जर्जरम पतित्यवश्यम, शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसी, और कहीं इधर उधर क्यों जाते हो, कौन सा औषध वो चाहिए ये चाहिए क्यों भागते हो। निरामयम कृष्ण रसायनम विभा, निरामयम जो एकदम शुद्ध कृष्ण कथा का जो रस है, कृष्ण कथा कृष्ण नाम का जो रस है उसको पियो। कि नम्र हो तो कृष्ण कथा को श्रवण कर सकते हो, कृष्ण नाम को निरंतर जप कर सकते हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, त्रिनाद विसुरीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना चैतन्य सदा। सदा भगवान का नाम कीर्तन करना है तो क्या होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। और नम्र होने के लिए क्या करना होगा, ये सोचना होगा मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन टू मी। इसे ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा हंगामा हूहा मत करो, शांति से जपमाला के अंदर हाथ डालो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और भगवान के साथ हाथ छोड़ो, जो हो सके उतना सेवा करो। और अभी शांति है तो समस्या परेशानी आने वाली है, तैयारी करो और खुशी से उस समस्या को और मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या आने वाला है, परम शांति आने वाला है। ठीक है, हरे कृष्ण। सब बैठिए दो मिनट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ देर के लिए रुकिए, थोड़ा अनाउंसमेंट सुंदर जाइए, बहुत ही सुंदर हमारे भक्ति के लिए मूल, जिसको मूल कहा गया भक्ति का, जो भी हम भक्ति का अनुपालन करते हैं, लेकिन अगर शरणागति नहीं है तो ये सब चीज नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया, बहुत बहुत आभारी हैं समालोचन प्रभु के। एक बार आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इसके साथ ही लगता है दादा जी धैरी मंदिर के पास बहुत बड़ा सौभाग्य है और सौभाग्य है कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस चतुर्मास में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए, उसके बाद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज आए, उसके बाद भक्ति रसामृत महाराज आए, और अब 11, 12 और 13 तारीख को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के ही शिष्य जो सन्यासी ने प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी, वो 11, 12 और 13 तीन दिन तक प्रातः काल में भागवत क्लास देंगे और संध्या काल में कार्तिक मास की महिमा का प्रवचन करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, और साथ साथ में आते संध्या का लव फीस्ट क्लास भी। स्मारक देंगे और अगले रविवार की जो सेवा है वो ऐसा निर्णय किया गया है कि कुछ नए भक्त काउंसलिंग से जुड़ रहे हैं तो उन भक्तों को दी जाएगी। पिछले रविवार को भी हमने काउंसलिंग के बारे में आपको बताया था, आज सोना बताते हैं कि राधा गिरधारी मंदिर से ही काउंसलिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया है। लगभग ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, लेकिन कई भक्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे